नमस्ते साथियों, मैं शालिनी पांडे बहराइच मोबाइल वाड़ी में आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, आज हम मिले हैं एक चाचा जी से, तो हम उनसे महिलाओं के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। पहले हम चाचा जी के बारे में जानकारी लेते हैं। चाचा जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए मोबाइल वाड़ी पे।
मेरा नाम दुर्गेश पांडे है, मैं चरदा जमोग में रहता हूँ। मेरा विकास खंड बाबागंज नवाबगंज है, तहसील ननपारा और जिला बहराइच है।
अच्छा, तो चाचा जी ये बताइए, हम आपसे कुछ महिलाओं पे चर्चा करेंगे। जैसे महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता के लिए ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे उनका जीवन बेहतर बनाया जा सकता है?
देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में ये लिखा गया है कि समता का अधिकार, महिलाओं के साथ कोई लैंगिक भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी समान माने जाएंगे। लेकिन ये कुछ दुर्भाग्य था हमारे समाज का या सत्ता के अधिकारियों का कि जिन्होंने उच्च शिक्षा के लिए विशेष ध्यान नहीं दिया, और समाज की संरचना भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक तो पहली बात तो हम ये मानते हैं कि प्रशासन की इच्छा शक्ति नहीं हुई कि वास्तविक रूप से हमारे यहाँ की महिलाएं जागरूक हो, क्योंकि शिक्षा का केंद्रीयकरण हुआ। यदि शिक्षा का विकेंद्रीयकरण होता, उच्च शिक्षा ग्रामीण स्तरों पर होते, अच्छे कॉलेजेज होते, तो गरीब और निर्धन व्यक्ति की महिलाएं भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। और यदि उच्च शिक्षा महिलाओं के अंदर नहीं है तो वो अपने अधिकारों को नहीं ले पाती हैं, इससे उनका शोषण हुआ। और इसका मेन कारण हमारी सामाजिक और प्रशासनिक संरचना का हम दोष देते हैं और मानते भी हैं, क्योंकि शिक्षा का केंद्रीयकरण हुआ, शिक्षा का विकेंद्रीयकरण नहीं। इससे जब महिलाएं जागरूक नहीं हुई, उनकी अर्थव्यवस्था नहीं समृद्ध हुई, तो वो अपने अधिकारों को जान नहीं पाई और शोषण की शिकार हुई। आज तक भारत में महिलाएं इसीलिए शोषित वंचित रहीं क्योंकि उनमें शिक्षा का अभाव था।
तो अंकल जी, ये बताइए कि अभी तो लोग शिक्षित हो रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब अब तो लोग को थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए, और ज्यादातर पुरुष ऐसा करते हैं महिलाओं के साथ, उनके साथ भेदभाव करते हैं, बहुत सारे अत्याचार भी करते हैं उनके ऊपर, तो ऐसा क्यों होता है?
अब शिक्षित तो हो रही हैं, लेकिन पैसे के अभाव में वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाती हैं, क्योंकि शिक्षा का केंद्रीयकरण है, उनके पास पैसा है नहीं, वो बनारस या लखनऊ नहीं पढ़ पाती हैं, अर्थव्यवस्था से कमजोर रहती, पुरुष प्रधान देश है, पुरुषों के अधीन रहती हैं, तो पुरुष उनका शोषण करते हैं। इसके लिए सरकार को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा का विकेंद्रीयकरण किया जाए, जिससे गरीब घर की महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करें और अपने पैर के ऊपर खड़ी हों और अपने अधिकारों को ले सकें, इंडिपेंडेंट रहें। कहने का मतलब यह है कि जब तक महिलाएं इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, किसी के आश्रित रहेंगी, वो अपने अधिकारों से हमेशा वंचित रहेंगी।
जी, ये बात आपने सही बोली कि हाँ, महिलाओं को, लेकिन उन्हें रोका जाता है, वो तो अभी भी लोगों के ऊपर डिपेंड होती हैं कि हाँ, वो हमको ये कराएं वो कराएं। जैसे लड़कियों के साथ ही ऐसा होता है कि घर वाले नहीं भेजते हैं। तो
देखिए, ये पहले था, पहले की सरकारों ने अनदेखी किया, लेकिन अब हमारे जब से योगी जी की सरकार आई है, नारी सशक्तिकरण और भयमुक्त समाज हुआ है। औरतें कहीं भी जा करके पढ़ सकती हैं, लेकिन उसमें मेन फैक्टर अर्थ का आता है, क्योंकि शहरों का खर्चा ज्यादा है, गरीब घर के बच्चे या गरीब घर की बच्चियां वो बेबहन नहीं कर पाती हैं। तो इसके लिए हमें सरकार से रिक्वेस्ट है कि शिक्षा का विकेंद्रीयकरण मेन फैक्टर है, जिस पर हमारे राजनयिकों को ध्यान देना चाहिए, तभी हमारे समाज का पूर्णतया कल्याण होगा। बाकी तो हमारी भाजपा सरकार में महिलाएं निर्भय हैं और कोई उनको भय नहीं है, क्योंकि महिला सेल स्थापना भी हुई है थाने में, महिलाएं अपने दुख दर्द को थाने में जाकर के कह सकती हैं। कोई शोषण सरकार की तरफ से ऐसा नहीं है जो महिलाओं के ऊपर हो, लेकिन वो अधिकार को नहीं जान रही हैं।
जी, यही तो बात है कि वो अपना
शोषित होती हैं, इसके लिए शिक्षा का विकेंद्रीकरण।
हाँ, वही चीज है ना।
हम राजनेताओं से कहते हैं कि अगर सर्व समाज का कल्याण चाहते हैं तो शिक्षा का विकेंद्रीयकरण करें, जिससे गरीब तबके के लोग अपने बेटियों को उच्च शिक्षा दे सकें और उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकें।
जी, चाचा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो ये थे हमारे चाचा जी ने, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें हमको बताई है। तो चाचा जी आप मतलब पैसे से क्या करते हैं, आप कुछ करते हैं क्या?
हम पैसे से वकालत करते हैं।
अच्छा ठीक है चाचा जी, फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।